الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में जो बुध की सुबह को होती है उसमें हम अपने हजरत पीर जुल्फकार अहमद लक्षबंदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उमूर खानदारी में हुस्न इंतजाम में से रिश्तेदारियाँ निभाना यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मौजू पढ़ रही हैं। और इसमें खावंद के साथ रिश्तेदारी निभाना यानी ताल्लुकात निभाना, अच्छे करना, ये पढ़ के हमने फिर सास ससुर ससुराल वालों के साथ ताल्लुक निभाना ये भी पढ़ लिया था, और फिर उसके बाद सास के साथ ताल्लुक निभाना ये हम पढ़ रहे थे। पेज नंबर 143 के ऊपर थे हम किताब के पिछली क्लास में, और इसमें हमने आखिरी बात पढ़ी थी कि कोई मुश्तरका सरगर्मी अपनाएं यानी सास के साथ ताल्लुक अच्छा बनाने के लिए कोई ऐसा काम करें उनके साथ जो कि अच्छी फायदेमंद चीज हो, एक्टिविटी हो। तो शॉपिंग यूजुअली लोग जो है वो साथ कर लिया करती हैं खवातीन, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर जो है वो साथ पढ़ना शुरू करें। जैसे कोई ऐसी क्लास है उसमें एक साथ ज्वाइन हो जाएं, ये वाली क्लास है या कोई और क्लास है, कहीं और ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही हो तो उसमें ज्वाइन हो जाएं, और खाली है नहीं कि क्लास में बस बैठे हुए हैं और वो भी सुन रही हैं और आप भी सुन रही हैं, बल्कि उसके बाद उसके ऊपर कोई डिस्कशन वगैरह भी या तकरार कोई ऐसा सेटअप रख लें कि क्लास खत्म होने के बाद फिर मिल करके उसके बारे में तकरार कर लें कि भाई आपने क्या समझा उस क्लास के अंदर, मैंने क्या समझा उस क्लास के अंदर, तो उसको आपस में डिस्कस कर लें। ठीक है, तो ये एक एक्टिव एक्टिविटी होगी। एक तो पैसिव एक्टिविटी होती है ना कि बस सुन रहे हैं और बस खत्म हो गया, तो उसको पैसिव कहेंगे, लेकिन एक्टिव एक्टिविटी जो एक्चुअली एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिव ही होनी चाहिए, वो ये होगी कि खुद भी उसके अंदर बात करें। ठीक है, तो इसमें एक अहम नुकता ये था कि जो साथ के मिल करके एक्टिविटी करनी होती है तो वो एक्टिविटी भी फायदेमंद कब होती है, जब इंसान जो है वो तरबियत याफ्ता हो, अखलाक के उसूलों को सामने रख करके बात करने वाला हो, वरना तो आपको पता ही है कि जैसे किचन की एक्टिविटी होती है अगर वो साथ चल रही है लेकिन अपने मिजाज पे काबू ना हो तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बहरहाल तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया था। अब आगे अगला पॉइंट है कि अपने आप को सास की जगह पर रखकर सोचें। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके थे इसके ऊपर कि अपने आप को किसी दूसरे की जगह पर रख करके सोचना, कंसिडरिंग योर सेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, किसी और के जूतों में अपने आप को समझना, तो उसका मतलब क्या होता है। तो फरमाते हैं कि कभी आपको सास की बात समझ में ना आए तो अपने आप को उसकी जगह पर रखकर सोचा करें कि वो ऐसे क्यों कह रही है। ठीक है, यानी आप उनकी जगह पर होती तो आप कैसा सोचती और आप जो है वो कैसी बात कर रही होती। कई मर्तबा कई दफा बहू महसूस नहीं करती कि सास की क्या फीलिंग्स महसूसात हैं। जब बंदा अपने आप को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ते नजर पर रखकर सोचता है तब बात समझ में आ जाती है। जैसे कि अगर आपकी औलाद होती और आपकी औलाद की जो है वो बीवी होती तो आप उसके साथ जो है वो क्या तवक्कोआत रखती, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखती, या अपनी औलाद से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती, किस तरह से। तो आगे फिर हजरत ने एक वाकया लिखा एक आदमी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में आया तो सर्जन या डॉक्टर उस वक्त घर में था, तो उसने नर्स को कहा कि उसको फोन करो कि मेरे बेटे का ऑपरेशन है, जल्दी आए। तो डॉक्टर के आने में चंद मिनट की ताखीर हो गई। जब डॉक्टर आया तो ये उसके साथ बहुत गुस्सा हुआ कि आप लोगों में इंसानियत नहीं है, हमदर्दी नहीं है, आपको किसी की तकलीफ का एहसास नहीं है। इतनी जली कटी उसने सुनाई कि हक तो ये था कि डॉक्टर भी गुस्से में आ जाता, मगर उसने तहम्मुल मिजाजी से उसकी बात सुनी और वो उस बच्चे को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चला गया। तकरीबन 1 घंटे का ऑपरेशन हुआ और 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो डॉक्टर बाहर निकला और उसने कहा कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है और तुम्हारे बच्चे की जान बच गई है। अब बाप चाहता था कि ये जरा मुझे तफसील बताएं, लेकिन डॉक्टर चला गया कि मैं जा रहा हूं। बाप ने समझा कि ये बड़ा मुतकब्बिर किस्म का डॉक्टर है, मुझसे उसने कोई बात ही नहीं की, मुझे उसने कोई तफसील ही नहीं बताई, आखिर को मैं बाप हूं। लेकिन हमारी तवक्को होती है ना कि डॉक्टर साहब जो है उधर हमसे आराम से बैठ करके बात करें और हमें जो है वो सारी बात समझाएं वगैरह। ठीक है, तो ये आमतौर पर ये तवक्को होती है मरीज को अपने डॉक्टर से, तो इसको भी इसी तरह की तवक्को थी। तो डॉक्टर साहब तो चले ही गए। ये फिर गुस्से होने लग गया। जब दोबारा गुस्से होने लगा तो नर्स करीब आई और कहने लगी कि प्लीज आप खामोश हो जाएं, मैं आपको असल बात बताती हूँ कि ये डॉक्टर इसलिए गया है कि उसने जाकर अपने बेटे को दफन करना। असल में उसका अपना बेटा घर में फौत हो रहा था और उसको बचाने के लिए उसका थोड़ा सा टाइम लग गया और आने में देर हो गई, मगर फिर भी उसने आपके बेटे को तरजीह दी और उसका ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई। इस दौरान उसको कॉल आ गई थी कि आपका बच्चा फौत हो गया है, इसलिए अब ऑपरेशन के बाद वो जल्दी घर चला गया ताकि उसको जाकर के कफन दफन का इंतजाम कर सके। जब बाप को पता चला तो उसे अपने इस रवैये पर अफसोस हुआ। तो कई मर्तबा इंसान दूसरे के शूज में अपने आप को डालकर देखे तब बात समझ में आती है। ठीक है, तो वैसे तो आमतौर पर अखलाक ऐसे ही रखने चाहिए कि सोचें कि भाई वो शख्स अगर ऐसे कर रहा है तो उसकी कोई वजह होगी। ठीक है, और अगर इल्म हासिल हो जाए तो फिर तो डेफिनेटली अगले बंदे का लिहाज ही करना चाहिए कि भाई उसके साथ ये मजबूरियां हैं, इस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको कोई उल्टी बात कह देती है, ठीक है, कोई गलत बात कह देती है, अखलाक के लेवल से गिरी हुई कोई बात कह देती है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपके दिल पे चोट लगती है, आपको जो है वो बुरा लगता है। तो ऐसे मौके पर ये सोच लें कि भाई उन्होंने जो ऐसी बात कही है तो वो अपनी लाइल्मी की वजह से कही है, उनको इल्म नहीं है, उनको समझ नहीं है, वो नहीं जानते, इस वजह से उन्होंने ऐसी बात कही है। अगर उनके पास इल्म होता तो वो ऐसी बात ना कहती। ठीक है, जैसे किसी से बात हो रही थी आप ही में से, उन्होंने कहा कि भाई लोगों ने जो है ना वो उनको ऐसे ऐसे कमेंट्स दे दिए तो उनको दिल पे चोट लगी, उनको अच्छा नहीं लगा। तो शायद उसने उनको ये बात समझाई कि भाई उन्होंने जो ऐसी बात कही ना आपको, तो बेचारी ये सोच लें उनके बारे में कि अभी उनको इल्म नहीं है, उनको पता नहीं कि ये बात जो वो कह रही है वो नहीं कहनी चाहिए, इससे किसी का दिल टूट सकता है और दिल तोड़ना जो है ये बहुत ही बुरी बात है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है, इस तरह से वो सोच रही है, इस वजह से जो मुंह में आता है बोल देती है। ठीक है, तो ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, किसी को दूसरे के बारे में इस तरह से सोच लिया जाए। नबी अलैहिस्सलाम को भी जब लोग तकलीफें दिया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही कहा करते थे, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ किया करते कि अल्लाह ये मेरे साथ जो कर रहे हैं इनको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, राइट, इनको मालूम नहीं, इनको समझ नहीं कि मैं आपका रसूल हूँ, मैं आपका पैगंबर हूँ, और मेरी मान करके, मेरी बात मान करके मैं इन्हीं का फायदा है और मुझे तकलीफ पहुंचा करके इनका नुकसान है, ये इस बात को नहीं समझते। ठीक है, तो अल्लाह आप उनको माफ कर दीजिए, अल्लाह इनको आप मोहलत दे दीजिए। ठीक है, और अपने मेहनत में लगे रहते थे कि उनको जो है वो जो इल्म है वो पहुंचाने की मेहनत, बलाग़ुल मुबीन की मेहनत वो करते रहते थे। ठीक है, तो यही हमें भी अपने अंदर यही पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हर वक्त बस गुस्सा हो जाना लोगों के ऊपर कि उसने ऐसा क्यों कर दिया और उसको ये नहीं करना चाहिए था, और वो ऐसी है, वो वैसी है। तो अब इस तरह से करके खाली आप अपना ही ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगी और कोई फायदा तो नहीं होगा इससे। ठीक है, तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि सास की दोस्त बन करके रहे। तो एक अहम पॉइंट ये है कि अपनी सास को समझने की कोशिश करें, उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारें और उसकी दोस्त बन करके रहें, ताकि वो अपने दिल को आपके सामने खोल दें। अलबत्ता सास से बात करते हुए हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें, कभी भी कोई बदतमीजी का लफ्ज ना कहें। ठीक है, तो उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारना, लेकिन उसमें शर्त यह है कि अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करके, ठीक है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करके उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारना, कि अगर वो कोई गलत बात कह देंगी या ऐसी बात जो कि आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो आप उसके ऊपर फौरन से रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि उसको पी जाएंगे। ठीक है, तो इस नियत के साथ उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारें और उनको ये मौका दें कि वो खुल करके अपने दिल का हाल आपके सामने बयान करें। ठीक है, जब इंसान अपने दिल का हाल खोल के किसी किसी के सामने बयान करता है ना, और वो उसको सुनने के लिए तैयार होता है, तो फिर जो है ना, ये फौरन जो है ना उसके ऊपर एतमाद करना शुरू कर देता है और उसको अपना दोस्त समझना शुरू कर देता है। ये इंसान की तबीयत है, इंसान की नेचर है। आपके साथ भी कोई ऐसा करे ना कि वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो और आपको यानी खाली दिल हल्का करने के ही मौका दे दे, ठीक है, और आपको टीज ना करे और आपको जो है वो ब्लेम ना करे और ये सब ना करे, तो आप भी उसको फौरन से दोस्त बना दे। ठीक है, तो यही चीज जो है वो सास के साथ भी है। भी सास भी एक इंसान ही है, ठीक है, वो खास तौर पर इंसानों में भी आगे बढ़ करके औरतों के साथ और भी ज्यादा ये होता है कि बस उनकी बात सुनी जाए। ठीक है, आपके साथ भी यही होता है कि बस आपको कोई सुनने वाला मिल जाए, बस उसी तरह से सास भी एक औरत ही है, उसको कोई सुनने वाली मिल जाए फौरन उसके साथ जो है वो दोस्ती बना लेगी। तो बड़ा ही आदत ने जो है ना यहाँ पर एक कार आमद यानी उसूल बता दिया है, तरीका बता दिया है कि जिससे कि बड़े बड़े मसले जो है ना वो आने से पहले ही रिजॉल्व हो जाए। भाई जब दोस्ती हो जाएगी बहू में और सास में, तो फिर कितना आसान हो जाएगा मामला। ठीक है, तो अगर दोस्ती नहीं होगी तो जाहिर है फिर वो कन्फ्रंटेशन का माहौल रहेगा, दुश्मनी का माहौल रहेगा, और फिर यानी छोटी छोटी बातें भी झगड़े का सबब बनेंगी। ठीक है, तो उन सबको हल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनके दोस्त बन जाएं, और दोस्त बनने का बेहतरीन तरीका क्या कि उनको सुनना शुरू कर दें। ठीक है, और आगे से कोई उल्टी सीधी बातें उनको मत सुना। ठीक है, बेशक वो गलत बात कर रही हो फिर भी पी जाए, सही बात कर रही हो तो और अच्छा है। ठीक है, और अगर गलत बात कर रही है तो उसका तो बेहतरीन तरीका है ना। ठीक है, कि अगर कोई गलत बात करे तो जी 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 ये जी का जो लफ्ज है ना, ये बड़ा कारामद लफ्ज है, बड़ा जबरदस्त लफ्ज है। ठीक है, तो या तो सर बस हिलाते, कुछ लोगों को तो माशाल्लाह वैसे ही सर हिलाने की आदत होती है, तो उनसे सीखना है, आप भी सर हिलाना शुरू कर दें। ठीक है, बड़ी हैं चूंकि सास उम्र में, तो इस वजह से उनकी गलत बातों की इसलाह जो है ना वो भी आप राइट अवे नहीं कर सकते कि बात टोकना शुरू कर दिया, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, ये गलत बात है, आप ये मत करें, आप ये मत करें। भाई जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो इसलाह है ना वो ऐसे मुंह पे नहीं करी जाती है, उसके लिए जो है वो उनकी बात को सुन लिया जाता है और फिर मुनासिब मौका देख करके, फिर मुनासिब तरीका सीख करके फिर उनको बताया जाता है। ठीक है, तो ये भी मत समझे कि अच्छा गलत बात सुन सुनूंगी तो मैं भी उस गुनाह में शरीक हो जाऊंगी और मैं भी जो है वो गुनाह वाली बन जाऊंगी क्योंकि वो गलत बात कर रही थी और मैंने उनकी इसलाह क्यों नहीं करी। नहीं, ये बड़ों के साथ ये उसूल नहीं चलता, इस बात को याद रखें, बड़ों के साथ ये उसूल नहीं चलता। बड़ों के साथ इसलाह करने का तरीका ये होता है कि आप उनकी बात को पहले सुन लें, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना बस दिल के अंदर तमन्ना ये रहनी चाहिए, दिल के अंदर फिक्र ये रहनी चाहिए कि ये बात गलत है और इसकी जो है ना वो अल्लाह आप मुझे किसी तरीके से इसकी इसलाह की तौफीक अता फरमा दें अच्छे अंदाज में। ठीक है, ये इस दिन में रहना जरूरी है। तो खाली जी जी कह देना गलत बात के ऊपर, ये आपको गुनाह में शामिल नहीं कर देता, ये आपको गुनाह का हिस्सेदार नहीं बना देता है, एज लॉन्ग एज आपके दिल के अंदर उसके लिए कराहियत हो और उसको यानी खैरख्वाही का जज्बा हो दिल के अंदर कि मैं किसी तरह से इनकी इस गलती की इसलाह कर लूं। ठीक है, तो जी 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 करना ये सीखना पड़ता है, इवन इसलाह करने के लिए भी जी 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 करना सीखना पड़ता है। ठीक है, और दोस्ती भी आप क्यों बना रही हैं, दोस्ती भी इसीलिए बना रही है ना ताकि फसाद ना हो, ताकि जो है वो झगड़ा ना हो, तो ये बात तो अल्लाह ताला को वैसे ही पसंद है कि घर के अंदर फसाद ना हो। ठीक है, तो जुबान को काबू में रखें, कभी भी कोई बदतमीजी का लफ्ज ना कहें। बदतमीजी का लफ्ज क्या होता है ये जरा आप बता दें, इस कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज बदतमीजी को डिफाइन करें कि बदतमीजी का लफ्ज इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं ना, सास की बात सुनना और सास की जो है वो दोस्त बनने की कोशिश करना, तो इसमें बदतमीजी का लफ्ज डिफाइन कैसे करें, कौन सी चीज बदतमीजी का लफ्ज कहलाएगी? जी, ये हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप चैट विंडो पर लिख करके इसका जवाब देते हैं। किस किस्म की बात बदतमीजी की बात कहलाएगी? तेज आवाज में बोलना, तेज आवाज में बोलना ठीक है, लेकिन अगर उनकी हियरिंग खराब हो तो फिर तेज आवाज में बोलना जो है वो बदतमीजी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उनकी हियरिंग खराब है, सास तो आखिर को ज्यादा उम्र की होंगी ना, तो फिर उल्टा जवाब ना देना या टोंट टोंट उनकी इस्लाह ना करना, तुरंत उनकी इस्लाह ना करना। अच्छा, तुरंत ये हिंदी का लफ्ज है, तुरंत यानी फौरन उनकी इस्लाह ना करना। चलिए, ये आपने बता दिया कि ये बदतमीजी का लफ्ज होता है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस बदतमीजी का लफ्ज कैसे होता है? उनको जवाब देना आगे से, मुंह बिगाड़ना ये भी सही है, मुंह बिगाड़ करके बात करना। अच्छा, आप गलत बोल रही हो, ये बोलना कि आप गलत बोल रही हो, ये बदतमीजी का लफ्ज होगा। ठीक है, तंजिया गुफ्तगू करना, अच्छा उल्टे जवाब देना, उल्टा सीधा तो फिर ये तो थिंक बाय प्लेसिंग आवर सेल्व इन देयर शूज, कि अगर मैं होती तो क्या मुझे बुरा लगता, ये बेहतर जवाब। ठीक है, बदतमीजी का लफ्ज जो है ना वो कहलाएगा कि अगर आपके साथ ये लफ्ज बोला जाता तो ये बुरा होता। ठीक है, ये एक अच्छा जवाब है कि अपने आप के ऊपर रख के सोचना ना कि भाई ये लफ्ज मुझे बोला जाता तो मुझे कैसा लगता। ठीक है, चले ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। इख्तिलाफ राय भी आया जवाब में, और ऐसे बात ना बोलना जिससे उनको तकलीफ हो, ये बहुत जबरदस्त जवाब। ठीक है, माशाल्लाह, ये जवाब है कि बदतमीजी की डेफिनेशन क्या होगी, कि जो उनको बदतमीजी लगे वो बदतमीजी है। ठीक है, नाक भौं चढ़ाना, तो बहू है वैसे भी, बहू होती है। बहरा, तो बदतमीजी की डेफिनेशन ये होती है जो कि सुनने वाले को बदतमीजी लगे। ठीक है, क्योंकि हर कल्चर में, हर जुबान में, हर उम्र के लोगों में अपनी अपनी तारीफें होती हैं बदतमीजी की और तमीजी की। ठीक है, तमीजदारी और बदतमीजी की अपनी अपनी तारीफ होती है ना लोगों की। ठीक है, कोई ऐसी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ बदतमीजी, ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो मजाक ना करने को बदतमीजी समझते हैं, कुछ लोग मजाक करने को बदतमीजी समझते हैं कि भाई ये क्यों, कोई कहते हैं जी ये मजाक क्यों नहीं करती, ये तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत ही कोई दिमाग इनका बहुत ऊंचा है, ये कभी हंसी मजाक नहीं करते। ठीक है ना, ये तो बड़े यानी पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं कि कभी हंसी मजाक ही नहीं करते, तो हंसी मजाक ना करना उनके नजदीक बदतमीजी है। ठीक है, कि अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और कोई जो है वो हंसी मजाक करें तो माशाल्लाह ऐसी छुई मुई होते हैं कि नहीं, जरा इधर से उधर बात हो गई, वो बस उनका माइंड माइंड कर जाते हैं फौरन से। ठीक है, तो इस वजह से सबसे अहम चीज ये होती है कि आप जो है ना वो अगले बंदे को पढ़ें, अगले बंदे को समझें कि ये किस फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है, इनके नजदीक बदतमीजी क्या चीज होती है। बस जो उनके नजदीक बदतमीजी है ना, आप उससे बचें, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाली डेफिनेशन आपको फायदा देगी, ठीक है, कि पहले उनको समझें, जिसके लिए उनको आपको सुनना पड़ेगा, उनको जरा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि उनकी तारीफ क्या है बदतमीजी की, और फिर वो उससे आप बच करके रहें। सही है, तो इवन यहां पर बीइंग इन हर शूज भी इतना फायदेमंद नहीं है कि अगर ये मुझे बोली जाती तो मुझे कैसा लगता भाई, इसलिए कि हो सकता है आपकी डेफिनेशन ऑफ बदतमीजी कुछ और हो, ठीक है। तो अगर अपने आप को उनके शूज में रख करके बदतमीजी को समझने की कोशिश करेंगी तो हो सकता है वो गलत, क्योंकि आपकी डेफिनेशन या आपके घराने, आप जिस घर से आई हैं या आप जिस कल्चर से आई हैं, वहां पे बदतमीजी की कुछ और डेफिनेशन हो, तो फिर ये फायदा नहीं देगी ना, ठीक है। तो अगले बंदे को पहले समझना और सुनना पड़ता है, सुन करके ही समझ सकता है इंसान, और देख करके भी। अल्लाह ताला ने दो आंखें भी दी हैं, कान तो दिए हैं सुनने के लिए, और कान तो सबसे अहम मैकेनिज्म होते हैं इनपुट लेने का, लेकिन आंखें भी दी हैं इस काम के लिए, तो आंखों से भी बहुत कुछ समझ में आता है कि वो बंदा जो है वो किस किस्म का इंसान है, ठीक है। तो कानों और आंखों का इस्तेमाल करते हुए समझ में, तो ये हो गया दोस्त बनने का तरीका, ठीक है। देखें, दो पड़ोसी के मुल्क होते हैं ना, अब आप वैसे तो खवातीन खवातीन भी, लेकिन इतना तो पता होता है कि भाई पड़ोसी मुल्कों के दरमियान जंगो जदल, ठीक है, ये उसका दुश्मन वो इसका दुश्मन, तो देखें पीस एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं ना, कि भाई आपको पता है कि पड़ोस मुल्क में जो है वो आपका दुश्मन बैठा हुआ है, वो आपकी खैर ख्वाही नहीं चाहता, वो आपके साथ जो है वो दुश्मनी करना चाहता है, आपके ऊपर हमला करना चाहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके साथ पीस डील करनी पड़ती है, लोग करते हैं अमन का मुआहदा करते हैं अपने दुश्मनों के साथ, इवन अपने दुश्मन यानी जिनको के वो जानते हैं कि वो दुश्मन है उनके साथ भी अमन का मुआहदा करते हैं। क्यों करते हैं अमन का मुआहदा, क्यों करते हैं पीस एग्रीमेंट, इसलिए कि उनको पता है कि अगर जंग हो गई ना तो फिर हम नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, ठीक है, नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, हमारे निजाम जो हमने इतनी मेहनतों से बनाए हैं वो यानी उलट पुलट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से एट एनी कॉस्ट वो जंग को अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो दोस्ती हो सके तो दोस्ती करते हैं, दोस्ती नहीं हो सके कि पता है कि वो बंदा दुश्मन है, दोस्ती नहीं हो सकती तो फिर कम से कम कोई अमन का मुआहदा तो कर लेते हैं ना। मकसद यहां पर यह नहीं है कि आप अपनी सास के साथ कोई बाकायदा अमन का मुआहदा साइन करें, ये कोई नहीं कह रहा, ये करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। मकसद यहां पर समझाने का ये है कि फसाद और जंग को अवॉइड करने की हर मुमकिन कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपका अपना फायदा भी है, खाली उनका फायदा नहीं है, आपका अपना फायदा भी है, आप नॉर्मल जिंदगी गुजार ही नहीं सकेंगी जब तक कि ये अच्छा मामला ना रहे आपस में घर के अंदर, ठीक है। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे हज़रत को, ठीक है, उनकी कब्र को नूर से भर दे और बेहतरीन मजीद अजर अता फरमाए, ठीक है, कि इतना आसान जो है वो तरीका बतला दिया दोस्त बनाने का कि बी ए गुड लिसनर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दबाव की हालत में अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह वाले तो असल बात तो फिर यही है ना कि अल्लाह से जोड़ देना, अल्लाह से रुजू करके ही बंदा अल्लाह से जुड़ सकता है, जो अल्लाह से रुजू ना करता हो वो कैसे अल्लाह ताला से जुड़ सकता है, जो कि हर वक्त जो है वो मखलूक के दुम में लगा रहे, ठीक है, मखलूक की ही फिक्र में लगा रहे, यानी सोचों में, फिक्र से मुराद यहाँ पर मखलूक की सोचों में गुम रहे, वो कभी भी अपने परवरदिगार से नहीं जुड़ सकता, ठीक है। परवरदिगार से जुड़ने के लिए तो परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे होना पड़ता है, इसी को रुजू करना कहते हैं। अगर आपको कभी स्ट्रेस या दबाव महसूस होता हो तो बस आप अल्लाह से दुआ करना शुरू किया कर दिया करें, ये सबसे बेहतर इलाज है। ठीक है, क्योंकि आपके दिल के अंदर जो स्ट्रेस की फीलिंग आ रही है ना, ये स्ट्रेस की फीलिंग जो है वो अल्लाह ताला अपने फैज से, अपनी तो रहमत से उस स्ट्रेस की फीलिंग को बहुत आसानी के साथ जो है वो दूर फरमा देंगे। ठीक है, वरना गोलियां खा खा करके भी ये स्ट्रेस की फीलिंग दूर नहीं होगी, और अपने आप को इधर उधर उल्टी सीधी कामों में मशगूल करके भी स्ट्रेस की फीलिंग दूर नहीं होगी। फीलिंग तो अल्लाह ताला ने दूर करनी है अपनी रहमत के जरिए से। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि हम अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू करते हैं। ससुराल में रहते हुए जो औरत अपने मामूलात को पूरा करती है, उसके लिए स्ट्रेसेस को बर्दाश्त करना भी आसान हो जाता है। मामूलात से मुराद जिक्र के मामूलात, और जिक्र किसका करना है? अल्लाह का करना है। ठीक है, तो अल्लाह का जिक्र करने से दिल को इत्मीनान मिलता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद वादा फरमाया है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ठीक है, अल्लाह के जिक्र से ही सुन लो के दिलों को इत्मीनान मिलता है। ठीक है, तो अल्लाह के जिक्र का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ तो अल्लाह का नाम रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला से गफलत, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान नहीं है, बस पढ़ रहे हैं अल्लाह का नाम। ठीक है, ठीक है, पढ़ने से फायदे आपने सुने होंगे बहुत के, अल्लाह के नाम में फिर भी फायदा है, बगैर ध्यान के भी पढ़ने में फायदा है। ठीक है, लेकिन ये गोल नहीं है, ये हमारा हमारी मंजिल नहीं है कि बेध्यानी के साथ जिक्र करते रहे। भाई नहीं बन रहा ध्यान फिर भी जिक्र करते रहे, गोल क्या है कि अल्टीमेटली ध्यान बन जाए। ठीक है, ये गोल नहीं है कि बस बगैर ध्यान के ही जिक्र करते रहे, कहने का मकसद खाली ये है कि अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो हो जो है ना, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का होना, ये असल असल चीज। ठीक है, तो मामूलात भी करने का मकसद यही है कि हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ बन जाए। ठीक है, तो इससे फिर दिलों का इत्मीनान हासिल हो जाता है। एक मैनेजर था, अब ये हजरत ने खास मामूलात के बारे में बड़ा जबरदस्त एक तमसील बयान करी है, तमसील से बात को समझा रहे हैं मिसाल से, कि एक मैनेजर था तो उसने एक मजदूर को रखा और उसे कहा कि तुम अपनी आरी से रोजाना दरख्त काटा। ठीक है, तो उसका काम ही यही होगा, कोई फॉरेस्ट कोई इंचार्ज होगा, उसने मजदूर को रखा दरख्त कटवाने के लिए। ठीक है, वो वहां पे डिफॉरेस्टेशन का मसला नहीं होगा, दरख्त काटना यही काम था उस मजदूर। तो उस मजदूर ने पहले दिन 30 दरख्त काटे, दूसरे दिन उसने 25 दरख्त काटे, तीसरे दिन उसने 20 काटे और चौथे दिन उसने 15 काटे। तो आखिर मैनेजर ने पूछा कि अब आप थोड़े दरख्त क्यों काटते हैं? उसने कहा कि मैं पूरा जोर लगाता हूं, काम कर कर के थक जाता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों अब मैं इतने ज्यादा दरख्त नहीं काट पा रहा। तो मैनेजर ने कहा कि तुम अब अपनी आरी को तेज कर दो। ठीक है, कि भाई तुम्हारी आरी जो है ना ये कुंद हो गई है, तुम जाकर के उसको तेज कर लो। तो मजदूर कहने लगा कि पहले ही मेरा काम खत्म नहीं हो रहा, उल्टा आप मुझे कह रहे हैं कि आरी को तेज कर लो, यानी एक और काम बता रहे हैं मुझे करने के लिए। ठीक है, दरख्त काटने का काम पूरा होता नहीं है, अब जो है तुमने आरी का काम, आरी को तेज करने का काम भी मुझे मेरे जिम्मे लगा दिया। तो उसने कहा कि चलो काम कम होगा लेकिन फिर भी आरी को तो तेज कर लो। ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स है ना हमारे जिंदगी में, उसी तरह उस मजदूर की जिंदगी में भी 24 आवर्स ही थे। तो वो अपने जॉब का टाइम जो था, जो कि होता है तकरीबन 10 घंटे अगर हुआ उसका जॉब का टाइम, तो 10 घंटे वो दरख्त काटने के अंदर लगा रहता था। तो अब उन्होंने कहा कि आरी तेज करने में तुम 1 घंटा लगाओ। तो मजदूर ने यही कहा ना कि भाई पहले मैं 10 घंटे में इतना काम नहीं कर पाता, अब आप कह रहे हैं कि मैं 9 घंटे लगाऊं काम करने के लिए और 1 घंटा जो है वो आरी तेज करने में लगाऊं। ठीक है, तो इससे तो मेरा काम और कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसने कहा, मैनेजर ने कहा कि तुम मेरी बात मानो, तुम आरी तेज करने में 1 घंटा लगाओ। ठीक है, अब आपको पता ही है मतलब, लेकिन आपके भी तो किचन के काम होते हैं ना, किचन की छुरियां होती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आरी होती है।
जब उस आदमी ने आरी को तेज कर लिया तो अगले दिन उसने फिर 15 के बजाय 30 दरख्तों को काट लिया। मसला यह था कि उसकी आरी कुंद हो गई थी, मेहनत उतनी ही हो रही थी लेकिन दरख्त कम कट रहे थे। यही हाल हमारे मामूलात का भी है। हम मामूलात करते रहते हैं तो हमारी आरी तेज रहती है। हम परेशानियों को आसानी से काट लेते हैं, जब आरी कुंद हो जाती है तो परेशानियां हमसे बर्दाश्त नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारे मशायख हमें मामूलात बताते हैं तो इसकी ये हैसियत है। ठीक है कि वो हमें जो है ना वो एक्टिविटी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बारे में भी हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट के अंदर भी शायद बात कर चुके हैं कि भाई आप फिजिकली जब घर के अंदर ही ट्रेडमिल के ऊपर कुछ वॉकिंग करती रहती हैं और कुछ उसके अलावा आप जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हैं तो आप चुस्त रहती हैं ना। ठीक है, तो उससे जो है वो आप काम तेजी से कर लेती हैं, और जब आपकी एक्सरसाइज वगैरह खत्म हो जाती हैं, नहीं कर रही होती हैं, तो फिर सुस्त पड़ जाती हैं और उतने काम नहीं कर पा रही होती हैं। ठीक, तो जिस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से मेंटल और स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए जो है ना वो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की भी जरूरत पड़ती है। मामूलात उसी को कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो इस्तग़फ़ार की तस्बीह करना, दुरूद शरीफ की तस्बीह करना और मुराकबे का सबक करना, तो ये यही मामूलात हैं, करने के मामूलात यही होते हैं। ठीक है, यानी जो पढ़ने के मामूलात एक्चुअली जिसको कह देते हैं, तो वो जिक्र तस्बीहात करना और जो है कुरान मजीद की तिलावत करना और थोड़ी देर के लिए अपने आप को तमाम कामों से फारिग करके अल्लाह ताला की याद में बैठ जाना, जिसको मुराकबा कहते हैं, तो ये मामूलात करने चाहिए। ठीक है, खुशियों को घर में बांटें। फरमाते हैं कि घर की जिंदगी में रहते हुए दूसरों के साथ खुशियों को शेयर करना पड़ता है, खुशियों को शेयर करना। जैसे बच्चों को कहा जाता है ना कि आप अपनी चीजों को शेयर करें, जो चीज आप को तोहफे में मिली है तो खाली ये नहीं कि दिस इज माइन, ये तो मेरा है और मैं किसी को नहीं दूंगा। तो माए फिर बच्चों को कहती हैं, अच्छी माए बच्चों को कहती हैं कि बेटा शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो बहरहाल ये एक जुमला है, बाकी केयरिंग का मतलब भी बताना पड़ता है कि भाई केयरिंग का मतलब क्या है, तो फिर शेयरिंग इज केयरिंग से बात समझ में आएगी ना। लेकिन एक अच्छी चीज है, शेयर करना अच्छी चीज है, इससे यानी आपको भी फायदा होता है, दूसरों को भी फायदा होता है, और ये हमें करना चाहिए। तो खुशियों को शेयर करना, तो उसमें भी हजरत ने फिर एक वाकया लिखा कि एक किसान था, तो वो कॉर्न यानी मकई उगाता था और हमेशा उसकी मकई बड़ी क्वालिटी की होती थी और उसका साइज भी बहुत अच्छा होता था, बड़ी बड़ी मकई के दाने होते थे और मीठी मकई यानी भुट्टा जो था ना, जहाँ हम भुट्टा कहते हैं उसको, तो वो मीठे दाने थे, उसमें कड़वे दाने नहीं होते थे, वरना कड़वे दाने वाले भी, अभी एक हमारे दोस्त बात है बता रहे थे कि एक मकई के फार्म में जा रहे थे, तो वहां से उन्होंने मकई तोड़ करके यानी भुट्टा तोड़ करके जो है ना उन्होंने वहीं पे खाने की कोशिश करी, तो बड़ा ही कड़वा भुट्टा, शायद मतलब तो उम्मीद है कि वो जाहिर फार्म वालों की इजाजत से इस तरह से कर रहे होंगे, लेकिन बड़ा ही कड़वा भुट्टा था वो। तो जब पूछा कि भाई इतना कड़वा भुट्टा क्यों है, क्यों है, उन्होंने कहा कि भाई ये भुट्टा जो है ना ये तो हम अपनी गायों को खिलाने के लिए उगाते हैं। क्या मतलब कि ऐसे भी मकई होती है कि जो कि कड़वी होती है, तो वो फिर लोगों को इंसानों में बेचने के लिए नहीं बना रहे होते हैं बल्कि मवेशी को खिलाने के लिए उगा रहे होते हैं। तो इसकी जो मकई थी ना ये बड़ी बेहतरीन होती थी और वो इनाम भी लिया करता था, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी फिर गवर्नमेंट्स भी करवाती हैं किसानों के दरमियान, सबसे अच्छी प्रोड्यूस के ऊपर इनाम देती हैं। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम हर बार विनर इनाम जीतने वाले बनते हो, तो तुम्हारी मकई के अच्छा होने की वजह क्या है? तो इसने कहा कि मैं अपनी मकई अपनी लेबर के साथ शेयर करता हूँ, यानी जो मेरे पास दूसरी जगहों पे काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो मैं उनको जो है वो अपने खेत की मकई जो है ना वो बांटता हूँ। लोगों ने कहा कि ये क्या बात हुई, ये तुम्हारी मकई इसलिए बेहतर होती है कि तुम अपनी मकई अपनी लेबर के साथ शेयर करते हो? मकई बेहतर करने का तरीका तो कोई ऐसा बताओ ना कि तुम उसके लिए जो बीज इस्तेमाल करते हो वो बीज तुम किसी खास जगह से लेते हो, या तुम उसके अंदर जो है वो कोई केमिकल्स डालते हो जिस केमिकल की वजह से वो मकई जो है वो मीठी हो जाती है, या कोई इस किस्म की बात हमें बताओ। ये कौन सी बात हो गई कि मैं चूंकि लेबर के साथ अपनी मकई शेयर करता हूँ इस वजह से मेरी मकई, ये तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बन रही इन दोनों बातों। तो उसने कहा कि मेरी मकई की क्वालिटी बेहतरीन इसलिए है कि जब फसल उठाता हूं ना, यानी जब फसल कट के आती है, तो मैं अपनी लेबर को भी दे देता हूं, लिहाजा मेरी लेबर फिर शौक में बेहतरीन क्वालिटी की मकई उगाती है, यानी जो मेरे मजदूर किसान है ना वो फिर बेहतरीन क्वालिटी का मकई मकई जो है ना वो उगाते हैं, यानी उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको वो बड़े दिल के साथ फुलफिल करते हैं। फिर जब फसल बनती है तो मकई से बीज एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाता है और वो दूसरे पौधे को जा करके भी बार आवर करता है, उसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो मेरी जो मकई है वो मेरी लेबर की फसल अच्छी होने की मेरी लेबर की फसल अच्छी होने की वजह से बेहतरीन पॉलिनेशन के साथ उगती है और बेहतरीन फल देती है। अगर मेरी मकई की क्वालिटी बेहतर होती और मेरे हमसाए की मकई अच्छी ना होती तो पॉलिनेशन बेहतर ना होती और मैं कभी भी जीत ना सकता। ठीक है, यानी बराबर का जो खेत होता है ना, तो वहां पर भी मेरी मकई का बीज उड़ करके जाता है और उसके खेत से भी जो है वो उसके मकई का बीज जो है वो उड़ करके आता है, तो इस तरीके से जो है वो बेहतरीन मकई प्रोड्यूस होती है। अब ये बात हो सकता है हमें आपको समझ में ना आई हो, क्योंकि हमारा जो है ना वो इस फील्ड के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन हजरत का तो ताल्लुक था। हजरत ने तो फिर इंजीनियर होने के साथ साथ फिर अपने जो बादुल फकीर अल इस्लामी के अंदर हजरत को अल्लाह ताला ने खेत खलियान का जगह अता फरमाई, तो वहां पर तो खूब रिसर्च कर करके जो है ना वो बेहतरीन फसलें हो गई। ठीक है, वो जमाना भी सारे उसको याद है कि जबकि वहां पर फसलें होती नहीं थी, तो हजरत ने मुझे अमेरिका में कहा था कि आप जो है ना वो वहां पे जो रिसर्च मटेरियल है वो इकट्ठा करके हमें भेजें। तो हजरत फिर उन बुक्स को पढ़ा करते थे और उसके मुताबिक फिर जो है वो अपने महद के खेतों के अंदर चीजें बोया करते थे। बताया मैं खाली मेरी से नहीं मिलती थी बल्कि और भी मुख्तलिफ जगहों से जो है वो सारी मटेरियल जमा कर करके उसको पढ़ पढ़ करके फिर उसके ऊपर, तो हजरत का तो ये बाकायदा एक फील्ड बन गई थी। तो इसमें फिर जो जो जिसकी फील्ड होती है फिर उसके वाकयात भी उसको पता ही होते हैं उसके बारे में। तो चुनाचे देखें कि उसने अपनी चीजों को शेयर किया और इसके बदले में उसको खुशियां मिली। तो ससुराल में रहते हुए अपनी खुशियों को ससुराल वालों के साथ शेयर करना चाहिए, इससे बंदे की अपनी खुशियों में इजाफा होता है। ठीक है, तो खुशियां शेयर करने से ना खुशियां जो है वो कम नहीं हो जाती बल्कि बढ़ जाती। ठीक है, इसका क्या मतलब है खुशियां शेयर करना? सोशल मीडिया के जमाने में खुशियां शेयर करने का मतलब लोग क्या समझते हैं कि फेसबुक के ऊपर जो है ना वो अपने इवेंट्स की तस्वीरें डालना और अपने घर की तस्वीरें डालना, अपनी तस्वीरें डालना, तो ये है जी खुशियां शेयर कर रहे हैं। हरगिज नहीं, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं। ठीक है, खुशियां शेयर करने का ये मतलब है ही नहीं कि आपके घर में जो हो रहा है उसकी तस्वीर उठा करके जो है ना वो या वीडियो बना करके आप फेसबुक पे डाल दें या व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर डाल, ये मतलब नहीं है खुशियां शेयर करने का। ये खालिसतन नुकसान को इनवाइट करने का तरीका है। ठीक है, नुकसान को इनवाइट करने का तरीका है, क्योंकि जब आप इस किस्म की तस्वीरें डालती हैं तो जो देखने वाले होते हैं ना तो उनकी फिर नजर लगती है और 100% नजर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल आइनु हक्कुन, कि नजर का लग जाना ये सच है, ये हक है, और ये बात हदीस से बिल्कुल 100% साबित है और मुशाहिदे से तजुर्बे से भी ये बात साबित है। हदीस से साबित होना काफी है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मुशाहिदे भी करवा दिए हैं कि नजर के जरिए से कैसे कैसे नुकसान पहुंचते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया के नजरे बद जो है वो तो ऊंट को हंडिया में पहुंचा देती है। ठीक है, कि बड़ा अच्छा सा ऊंट था किसी के पास और किसी ने उसको जो है ना वो नजर लगा दी तो वो ऊंट जो है ना फिर बीमार होकर के या तो मर जाता है या वो किसी के छुरी के नीचे आकर के जबा होकर के बोटियां बन करके हंडिया में पहुंच जाता। मतलब कहने का ये नहीं था कि बस ऊंटों को जो है वो नजर से बचाओ या कभी किसी ऊंट को जबा ना करो। मफहूम क्या है इस हदीस का कि नजर का जो है वो इतना असर होता है कि इंसान जो है वो उससे बीमार पड़ सकता है, हद तक मौत का भी शिकार हो सकता है। और ये जो जादू वगैरह किए जाते हैं ना, तो ये जादू भी जो है वो ऐसे ही किए जाते हैं तस्वीरों के ऊपर। ठीक है, तस्वीर जादूगर के हाथ में आ जाए अब जो है ना वो उसको जादू करना बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो अपनी तस्वीर शेयर नहीं किया करें लोगों के साथ, खुसूसन औरतें, तो वैसे भी उनके ऊपर पर्दा फर्ज है। ठीक है, तो इस एहतमाल की ही वजह से अपनी तस्वीरों की हिफाजत करें कि किसी गैर महरम के हाथ लग गई तो मेरे ऊपर बेपर्दगी का वबाल आएगा, गुनाह आएगा मेरे ऊपर बेपर्दगी का। ठीक है, और जो इवन दूसरी औरतें भी हैं ना, तो उनके साथ बेपर्दगी तो नहीं होती आपकी अगर चेहरे की तस्वीर उनको मिल जाए, लेकिन किसी के दिल में आपके खिलाफ बुराई आई, ठीक है, तो उसने जो है वो हसद की नजर से आपकी तस्वीर को देख लिया, बस उसका असर आपके ऊपर होगा। ठीक है, हत्ता के नजर का मामला तो ये भी है कि जो आपसे मोहब्बत भी करते हैं ना, वो भी जरा ज्यादा मोहब्बत की नजर से देख लें ना अगर, तो भी नजर लग जाती है। इसी वजह से माँ बाप की भी नजर लगती है अपनी औलाद को, माँ बाप की भी नजर लगती है अपनी औलाद। ठीक है, इसी वजह से माँ बाप भी अपनी औलाद को देखें ना, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला भी साथ पढ़ा करें। ठीक है, जब ज्यादा प्यार आ रहा हो ना, और ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार से देखने का जो है वो मूड बन रहा हो, अल्लाह को याद करें उस वक्त, वरना आपकी भी नजर आपकी औलाद को लग सकती है। तो जब माँ बाप की नजर अपनी औलाद को लग सकती है, तो क्या गैरों की नहीं लगती? ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट मैसेज में एक और बात याद दिलाई कि नजर तो बाकायदा कुरान मजीद से भी साबित है। कैसे? कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को कहा था ना कि तुम जब जाओगे अजीज मिस्र के पास, तो शहर के अंदर एक दरवाजे से दाखिल ना होना, क्योंकि तुम तादाद में 11 हो और 11 भाइयों को वो एक साथ दाखिल होते हुए कोई देखेगा तो उसकी नजर लग करके तुम्हें नुकसान ना हो जाए, तो इस वजह से तुम मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हो, सब एक साथ दाखिल ना होना। कि भाई ये तो एक बड़ा, शक्लो सूरत भी एक जैसी होती है ना भाइयों की। ठीक है, और थे भी माशाल्लाह बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, तो क्या वजाहत होगी, क्या खूबसूरती होगी, क्या शान शौकत होगी। तो अब जो एक साथ सारे के सारे चल के दाखिल हो रहे होंगे, तो देखने वाले जो है ना उनकी नजर लगना जो है वो बहुत ज्यादा उसका अंदेशा था। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुख्तलिफ दरवाजों से, इसकी तफसीर यही। ठीक है, तो अल आइनु हक्कुन। ठीक, तो कभी भी अच्छा अपनी शक्ल ना डालें, अपने घर की भी तस्वीर डालने की क्या जरूरत है? जब नया बर्तन लिया है या नई जो है वो फर्नीचर लिया है या नई फलानी चीज आई है, अब उसकी तस्वीर जो है वो फेसबुक पे डाल रही है, ठीक है, और स्टेटस के ऊपर लगा रही है, बच्चा पैदा हो गया, अब बच्चे की जो है वो हर वक्त उनका या तो कार्ड डाल रही है व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, या जो है वो बच्चों को जो तोहफा मिला है वो तोहफा डाल रही है व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, या जो है वो कोई और इस किस्म की घर के अंदर कुछ डेकोरेशन करी है उसको डाल रही है। क्या है ये? इंतहाई बचकाना किस्म की हरकत और नुकसानदेह है ये हरकत, इससे तौबा करनी चाहिए। ये हरगिज जो है वो खुशियों को शेयर करने का तरीका नहीं है, ये कभी भी नहीं था ये तरीका, ये आज जो है वो शैतान ने इजाद करवा दिया है। क्यों इजाद करवा दिया? क्योंकि उसको हमसे दुश्मनी है, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस वजह से उसने ये तरीका इजाद करवाया। ठीक है, तो ये नहीं है खुशियों को बांटने का तरीका, ठीक है, बल्कि ये गमों को इनवाइट करने का तरीका है, इसे तौबा करनी चाहिए। खुशियों को बांटने का तरीका जो है ना वो ये होता है कि दूसरों को अपनी खुशी में शरीक करना, कि भाई उनके साथ अच्छे से बात करना, उनके साथ जो है वो अपनी जो जिन लोगों से मतलब अच्छा ताल्लुक है, दोस्ती का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है, रिश्तेदारी का ताल्लुक है, उनको अपने इवेंट में बुला लेना, ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनली खुशियों को बांटने का यही तरीका था। और इससे भी बढ़कर के कम से कम दर्जे में इसका मतलब ये होता है कि अपने दिल में जो है ना वो दूसरों के बारे में कीना और हसद ना रखना। ये हसद और कीने की जो रूहानी बीमारी है, इस रूहानी बीमारी को खत्म करना अपने अंदर से, ठीक है। लोगों को अपने सक्सेस के अंदर शामिल करना, ठीक है, आपको भी किसी चीज से फायदा हो रहा है, किसी चीज से कामयाबी हो रही है, तो दूसरों को भी, ये नहीं कि मैं इतनी कामयाब हो गई, देखो मैं इतनी, मेरे पास इतनी जबरदस्त नेमत आ गई और मेरे पास जो है वो ये चीज आ गई वो आ गई, ये नहीं है खुशियों को बांटना, बल्कि जिस तरीके से आपको खुशी मिली, ठीक है, तो दूसरों को भी बता देना ताकि उनको भी ये खुशी मिल सके, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर करें और कुछ बात ना करें, आपको दीनी फायदा हासिल हो, ठीक है ना, हम अपनी बात करते हैं, वरना तो मिसालें तो और भी बहुत सारी दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस क्लास से रिलेटेड बात है कि भाई आपको दीनी फायदा हासिल हुआ, ठीक है, आपको जो है वो ये बात समझ में आ गई कि सास साहिबा के साथ जो है ना वो झगड़े अवॉइड करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका क्या है, आज आ गई समझ में, अल्लाह करे आ गई हो, ठीक है, कि जी उनके साथ दोस्ती बनानी है, और दोस्ती बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सुनना है, ठीक है, और अगर उनकी कड़वी बात लगे तो उसके आगे जी 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 कहना है या मुंडी हिलानी, ठीक है, सर हिलाना है, माशाल्लाह। अब जो है ना वो आपका घर का जो माहौल था, जो झगड़े थे, जो टेंशन थी, जो एक अजीब मुसीबत का हर वक्त का फसाद का माहौल था, वो फसाद का माहौल खत्म हो गया आपके घर से, अल्हम्दुलिल्लाह सास साहब के साथ जो है वो दोस्ती बन गई। अब ये खुशी है कि नहीं है, घर के अंदर अच्छा माहौल बन गया, ये खुशी मिली आपको कि नहीं मिली, आपके काम अब आसान होना शुरू हो गए, अब आपने तरक्की करना शुरू कर दी, अब आपने जो है वो माशाल्लाह प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी, क्योंकि झगड़ा लड़ाई और वॉर टाइम सिचुएशन खत्म हो गई। शेयर दिस विद समवन एल्स, ठीक है, कि दूसरों को भी बताएं कि भाई ये बेहतरीन एक तरीका मैंने सीखा, इससे मुझे खुशी मिली, इससे मुझे फायदा हुआ, मैं आपको भी बताती हूँ ये तरीका, आप भी इस तरीके से फायदा हासिल कर सकती हैं, आपके घर का भी माहौल अच्छा हो सकता है, ठीक है। किसी के घर में औलाद नहीं हो रही थी, अब उसको जो है वो कोई ऐसा तरीका, यानी कोई ऐसा इलाज का पता चल गया कि भाई फलानी जो है ना वो जिस तरह की डॉक्टर्स होती हैं, कोई ऐसी गायनोकोलॉजिस्ट मिल गई, या कोई ऐसी जो है वो क्या होती है वो डिफरेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट वाली कोई ऐसी एक्सपर्ट मिल गई, ठीक है, कि जिससे कि जो है वो आपका जो कोई फिजिकल मसला था वो मसला हल हो गया, अल्लाह ताला ने आपको भी उस इलाज के वास्ते से अल्लाह ताला ने आपको औलाद दे दी, ठीक है, तो अब किसी और के घर में भी औलाद नहीं हो रही है, आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई इन्होंने भी जो है वो इलाज विलाज करवाए लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको बता दें कि भाई फलानी जो है ना वो डॉक्टर के इलाज से जो मुझे बहुत फायदा हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से खुशियां शेयर करना, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा मजीद कि जैसे इस तरह हमें हुफाज कराम के लिए सेलिब्रेशन हुई और दूसरे लोगों को भी उससे मोटिवेशन मिली, हुफाज कराम की सेलिब्रेशन हुई, मतलब बात जब किसी का हिफ्ज मुकम्मल होता है तो उस हिफ्ज के बारे में के ऊपर फिर एक दावत कर लेते हैं और थोड़ी बहुत जो है वो कुरान मजीद के बारे में बयान हो जाता है और हुफाज की कुछ दिलजोई हो जाती है, उनकी हौसला अफजाई हो जाती है, तो इसको सुन करके दूसरों को भी जो है वो हौसला मिलता है कि अच्छा हमारे बच्चे भी हिफ्ज कर रहे हैं, बच्चों को बाकायदा माशाल्लाह ऐसे बच्चे भी बताया हमें कि भाई हमारे बच्चे ने जब दूसरे बच्चों के हिफ्ज के बारे में सुना तो उनके दिल में शौक पैदा हो गया कि हम भी हिफ्ज करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये होता है खुशियों को बांटना, बांटने का मतलब, ठीक है, तो क्या मतलब होता है ये हमें पता होना चाहिए, और क्या मतलब नहीं होता है वो भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम उससे बच सकें, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक जो है बच्चों के साथ ताल्लुक में इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे, किसी को कोई सवाल पूछना हो या कोई और चीज बतानी हो। लिख करके शेयर कर सकती हैं, वरना क्लास खत्म। नजर लगने के ऊपर साजिश ने खुद भी इसी तरह का मामला देख करके कि भाई हमारे कोई अजीज रिश्तेदार थे, उन्होंने बहुत ही अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर जो है ना वो डाली हुई थी अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने साजिश के दिल में डाली और मौका भी अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया, तो एक छोटा सा मजमून लिख करके जो है ना वो हमने उनके साथ शेयर किया। क्या अल्हम्दुलिल्लाह उसको पढ़ करके फौरन उन्होंने तस्वीरें हटाई, और उसके बाद जितने लोगों को भेजा है ना हर बंदे ने अपनी तस्वीर को हटाया उस मजमून को पढ़ने के बाद, हत्ता कि हमने फिर बिलाखिर पूरे ग्रुप के ऊपर भी उसको शेयर किया, लेकिन ग्रुप के ऊपर लोग पढ़ते नहीं है, मसला यही है। ठीक है, तो बहरहाल इंडिविजुअली जिस जिसको भेजा उसने अपनी तस्वीर वहां से हटाई है, क्योंकि उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दलाइल दिए हैं और ऐसे मुशाहदे भी बताए हैं कि जिससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। बड़ा ये कहते हैं ना अल्लाह हिफाजत करने वाला है, इसका भी जवाब उसके अंदर मौजूद है कि नहीं अल्लाह हिफाजत हर एक की नहीं करने वाला। ठीक है, जो अल्लाह ताला के शर्त को पूरी करता है, अल्लाह ताला की हिफाजत मशरूत है। ये नहीं है कि आप उल्टा सीधा कोई अमल करते रहें और कहेंगे नहीं अल्लाह हिफाजत करने वाला है तो इस वजह से मैं तो उल्टा काम करूंगा। ठीक है ना, तो ठीक है उल्टा काम करो, अपने बच्चों को सड़क के ऊपर डाल के आ जाओ, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। उधर क्यों नहीं डालते, अल्लाह की हिफाजत उस वक्त क्यों नहीं याद आती जब सड़क पे अपने बच्चों को ट्रक के सामने डालते हो, तो उस वक्त अल्लाह हिफाजत नहीं कर सकता, डाल नहीं डालते ना फिर ट्रक के सामने अपने बच्चे को। तो इसी तरीके से ये भी है, लेकिन तुम इस बात को मानते नहीं हो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बात को तुम मानते नहीं हो कि अलैनु हक, ये नजर लगती है उसे जो है वो नुकसान होता है। ठीक है, तो आप बेवकूफी की बातें करते हैं, अल्लाह हिफाजत करने वाला है खामखा में, इस तरह के ना अपने आप को तसल्ली देने के लिए, उल्टे काम करने की हुज्जत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, तो ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है बल्कि खालिस्तन नुकसान ही है। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।